శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద దేవ్ కి, శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్ కి, శ్రీ శ్రీ పంచతత్వ కి, సమవే గౌర భక్త వ్రజ కి, తాయి గౌర ప్రేమానందే. సబ్ మేరే పీచే దోహరాయే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాధశ జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురుమిలితం ఏనా తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Sri Chaitanya Manoveshtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Harita Sri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Chaganpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vacha Kalpata Rupyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna आप सबका स्वागत है इस सैटरडे प्रोग्राम में. तो आज हम चर्चा करेंगे एक महान आचार्य के जीवन के बारे में. तो आचार्य आप उनसे परिचित हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि जो वैष्णव का जीवन चरित्र है वो एक साधक के लिए जो कृष्ण भावना का प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है या परम आवश्यक है सुनना या उनके जीवन से इंस्पिरेशन या शिक्षा प्राप्त करना. क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनका एक ही बिजनेस है. उनका बिजनेस क्या है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को इस जड़ जगत में भेजते हैं. तव निज जन को न महाजने पाठाइया दिल तुमी. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के जो भक्त इस जगत में आते हैं तो वो अपने कर्मों का उपभोग करने के लिए नहीं आते हैं. हम इस जगत में जन्म लेते हैं तो हम कर्मा का जो साइकिल है हाँ उसका उपभोग करने के लिए इस जगत में आते हैं. लेकिन जो भगवान के भक्त हैं भगवान अपने वैकुंठ धाम से उनको इस जड़ जगत में भेजते हैं और दूसरे जीवों को भगवत सेवा में प्रवृत्त करने के लिए इंस्पायर करने के लिए भेजते हैं या अपने धाम उनकी गर्दन पकड़ के वापस ले आने के लिए भेजते हैं. जैसे हाँ कोई पिता है तो उनके दो बच्चे हैं, बड़ा एक छोटा. छोटा किस कारण से भाग जाता है, घर से दूर हो जाता है. तो बड़ा जो बेटा है पिता कहते हैं कि जाओ हाँ अब जाओ वहां वो है उसकी गर्दन पकड़ के ले आओ मेरे पास. हाँ तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं महान जिनको महाजन कहा जाता है उनको भगवान अपने धाम में धाम से भेजते हैं हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए. इसलिए जो आचार्य होते हैं उनको कहा जाता है उद्धारक आचार्य. इस जगत में उद्धार करने के लिए आते हैं. जो जीव भौतिक भोग की लालसा से इस जगत में सड़ रहे हैं उनको ये जगत से ले जाने के लिए आते हैं. तो ऐसे एक महान आचार्य हैं जिनका नाम था यमुनाचार्य. क्या था? जोर से बोलिए. हाँ तो यमुनाचार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो कुछ समय के लिए आपको बड़े गंभीरता से सुनना है और समझने का प्रयास करेंगे हम. तो यमुनाचार्य एक विशेष आचार्य हैं जिनका जो जन्म है द्रविड़ देश में हुआ था. कहाँ हुआ था? द्रविड़ देश. अभी स्कूल के दिनों में जब मैं इन आचार्यों के बारे में पढ़ रहा था तो स्कूल के दिनों में ये नाम हम सुनते हैं द्रविड़. नहीं वो जनगण मन आदि नायक जय है उसमें द्रविड़ आता है. तो मैंने सोचा कि ये द्रविड़ देश कोई सर्व सामान्य देश नहीं है जिसको पंच द्रविड कहा जाता है। वहां आंध्रा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, इन सबको मिलाकर पंच द्रविड़ कहते हैं। भागवत में इनका वर्णन आया है। तो द्रविड़ क्यों? क्योंकि द्रव द्रव में जल के जो नजदीक है उनको द्रविड़ एक प्रकार से कहा गया है। तो ऐसे द्रविड़ देश जिसको दक्षिण भारत के नाम से हम जानते हैं, भारत में दक्षिण भारत है, तो वैसे देखा जाए ये जो दक्षिण भारत है, द्रविड़ देश है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पद्म पुराण में भक्ति देवी स्वयं कहती है उत्पन्नम द्रविड़ देशम, उत्पन्नम द्रविड़म चाहम, कहते कि मैं, किसी ने पूछा है भक्ति देवी तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, बताओ बताओ, तो भक्ति देवी स्वयं कहती है कि मेरा जो जन्म स्थान है वो द्रविड़ देश है। भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ है। जब वो वॉकिंग करने लगी, चलने लगी आगे, जब वो महाराष्ट्र में पहुंचती है तो बहुत युवा हो जाती है, रुष्ट पुष्ट हो जाती है, फलती फूलती है, लेकिन जब गुजरात में आती है तो वीक हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति बहुत अधिक है, तो बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है, अपना यौवन अपना सौंदर्य सब कुछ खो देती है। लेकिन जब वो वृंदावन पहुंचती है तो फिर से भक्ति देवी को अपना जो शक्ति है वो प्राप्त होता है। तो द्रविड़ देश में क्यों भक्ति देवी का जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि वहां सबसे अधिक भक्तों का जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? भक्तों का, वैष्णवों का। इसलिए दक्षिण भारत को ये भक्तों का जन्म स्थान कहा गया है। इसलिए जो चार संप्रदाय है, ब्रह्म रुद्र आदि जो संप्रदाय है, स्त्री संप्रदाय, कुमार आदि, तो ये जो संप्रदाय है इनके जो चारों आचार्य हैं, इनका प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ है। अभी आप सब तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर भारत, तो यहाँ सारे भगवान प्रकट हुए हैं। कृष्ण अयोध्या में नहीं, वृंदावन में, भगवान राम अयोध्या में, और बुद्ध भी कहाँ? गया में। तो कई प्रकार के जो भगवत अवतार है वो नॉर्थ इंडिया में हुए हैं। इसलिए यहाँ के लोगों में पुरुष अर्थ का जो भाव है, स्वामित्व का भाव है, भोग का भाव है, ईश्वरत्व का भाव है, मैं का जो भावना है वो बहुत अधिक है। तो ऐसे भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान कहाँ भागते हैं? दक्षिण भारत भागते हैं, क्योंकि वहां उनके भक्तों ने जन्म लिया है। तो भक्ति का जो जन्म है वो होता है भक्तों के हृदय में। भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति का जो जन्म स्थान है वो है भक्तों का संग। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आता है, उसी क्षण उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी का प्राकट्य होता है, भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। तो ऐसा जो दक्षिण भारत है, जहां वास्तव में बहुत अमेजिंग कल्चर है, वहां का जो संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति स्वाभाविक रूप से उस स्थान में निवास करती है। सदाचार है वहां, लोग सुबह उठते, जल्दी उठने की आदत है। दक्षिण भारत में लोग बहुत जल्दी उठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, घर के सामने रंगोली बनाएंगे, गोबर से सफाई करेंगे आंगन की, नीच एंड क्लीन, और उठकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, बच्चों को भी वैदिक मंत्र सिखाएंगे। इवन वहां जो ड्राइवर है उससे भी आप सदाचार, वैष्णव एटिकेट क्या है वो आप सीख सकते हैं। लेक्चर आदि से सीखा नहीं जा सकता, उतना आप कहां सीख सकते हो? वहां के लोगों के आचरण में। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, अभी वहां भी क्या हो गया है, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वैसे वो टॉलीवुड आया है ना? तो वहां भी टॉलीवुड और ये सारे जो भौतिक मॉडर्न जो कल्चर है उसका आक्रमण हुआ है। इसलिए लोग सभ्यता भूलते जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वहां आप देखेंगे सर्वाधिक मंदिर आदि है। तो ऐसे स्थान में, दक्षिण भारत में जो ये आचार्य हैं,
यवनाचार्य जिनका जन्म हुआ,
बल्कि दक्षिण भारत में जो प्रमुख आचार्य है उनको कहा जाता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में हर कोई व्यक्ति श्रीपाद रामानुजाचार्य को जानता है, क्योंकि राम और अनुज, अनुज में छोटा, तो राम के जो अनुज हैं लक्ष्मण स्वयं ही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं दक्षिण भारत में। तो ऐसे श्री संप्रदाय के आचार्य है रामानुजाचार्य, और ऐसे रामानुजाचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। क्या नाम था? यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य का जो आविर्भाव है या प्राकट्य है वो मदुराई में हुआ था। तो यमुनाचार्य के बारे में श्रील प्रभुपाद ने अपने कई ग्रंथों में लिखा है। भगवद गीता में आप पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में कई श्लोकों के तात्पर्यों में यमुनाचार्य के जो श्लोकाज हैं उनको प्रभुपाद ने उद्धृत किया है और उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है। तो ऐसे यमुनाचार्य थे जिन्होंने एक स्तोत्र लिखा था जिसका नाम था स्तोत्र रत्न। तो इतना अधिक फेमस था कि उसको जो भी पढ़ेगा वो भगवान के प्रति आसक्त तो हुए बिना रह नहीं सकता, भगवान के लिए रोए बिना रह नहीं सकता, ऐसा अमेजिंग स्तोत्र की उन्होंने रचना की थी। तो उसी स्तोत्र को भक्ति विनोद ठाकुर ने जो संस्कृत श्लोक था उनको सारा बंगाली सॉन्ग्स में लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था गीतमाला, जिसमें उन्होंने उसी स्तोत्र को यमुना भावावली के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ये यमुनाचार्य हैं जिनका जन्म हुआ था मदुराई में, और ऐसे उस समय मदुराई में जो पांडे किंग है, चोला किंग थे, पांडे किंग है, उनका राज्य था। तो ऐसे मदुराई में एक महान भक्त थे कृष्ण के जिनका नाम था नाथ मुनि। क्या नाम था? तो नाथ मुनि बहुत महान भक्त थे कृष्ण के, बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, एक्सपर्ट थे, अष्टांग योग आदि को भी जानते थे। उनके पुत्र थे जिनका नाम था ईश्वर मुनि, और ऐसे ईश्वर मुनि के ही जो पुत्र हैं, ईश्वर मुनि का जब विवाह हुआ, जो बहुत स्कॉलर थे, सुंदर आदि थे, और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, तो एक बार विवाह के तुरंत बाद उन्होंने सोचा हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, लोग आजकल हनीमून के लिए जाते हैं, कहां दूर चले जाते हैं। लेकिन वहां ईश्वर मुनि ने और नाथ मुनि अपने सारे पत्नी आदि को लेकर कहां आए? सबसे पहले वृंदावन आए। कहां आए? वृंदावन, ब्रज भूमि में आए, जहां उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा आदि की, यमुना में स्नान आदि किया, अलग अलग विग्रहों के दर्शन आदि किए। तो ऐसे ब्रज का भ्रमण करने के बाद ईश्वर मुनि और नाथ मुनि, उनकी पत्नी आदि ये सब जो वापस गए, तो ईश्वर मुनि की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, और बालक को जन्म दिया तो ईश्वर मुनि के जो पिता थे नाथ मुनि, उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या रखो? तो उनको स्मरण हो आया, वृंदावन का स्मरण हो आया। कहां का? तो वृंदावन में कई चीजें प्रमुख है, एक तो गोवर्धन है, दूसरा यमुना है। तो उन्होंने सोचा वृंदावन का सदैव मुझे स्मरण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना जो क्या कहते पोता ना, तो उनका नाम उन्होंने लिखा रखा यामुन। क्या रखा? यामुन। आगे चलकर वो यामुन ही यमुनाचार्य बने। तो ऐसे ये जो यमुनाचार्य हैं उनका जन्म होता है, और उनके जो पिता हैं ईश्वर मुनि, कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद जो नाथ मुनि थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अभी तो मेरे जो पुत्र था उसका विवाह हुआ था, अभी तो वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था अपनी पत्नी आदि के साथ, तो जैसे उनके पुत्र का देहांत हुआ तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा यह भौतिक जगत सदैव दुखमय है, इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना कौन पीड़िता, कौन सा ऐसा कुल है जिसमें दोष नहीं है, और कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसके पास शारीरिक व्याधि या दुख नहीं है, कष्ट सौख्य निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, कोई है? नहीं है। तो उन्होंने सोचा ये भौतिक जगत हमेशा कष्ट देने वाला है, एक चिंता से मुक्त होते तो दूसरी चिंता सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाती है। तो व्यक्ति हर समय कष्टों को झेलते हुए अपना जीवन केवल काट रहा है, वो कोई भी कहते बस दिन कट रहा हूं मैं, बस अभी दुखी है बेचारा, क्या करेगा, दिन काटते जा रहा है। बल्कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु को देखते जा रहा है, बस अभी मृत्यु के लिए जी रहे हैं। गांव में आप जाएंगे, गांव में आप देखेंगे कि अधिकतर लोग माता पिता गांव में रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह आदि करते हैं और शहरों में जाके सेटल हो जाते हैं या विदेशों में जाते हैं। तो गांव में माता पिता केवल देखते रहते हैं, समय काटते हैं और किसको देखते हैं, मृत्यु का इंतजार करते हैं, बस अभी मृत्यु आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से नाथ मुनि ने सोचा कि क्या जीवन का ऐसा लाभ, उन्होंने उनको वैराग्य आ गया। वो पहले से ही महान भक्त थे लेकिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वो पूरे पृथ्वी में विचरण करने लगे जो नाथ मुनि थे। फिर ये जो नाथ मुनि अपने ये जो पोता है उनको उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर के साथ ये यमुना रहने लगे, यमुनाचार्य। फिर कुछ दिनों के बाद यमुनाचार्य जब 5 साल के थे तो वो एक भाषाचार्य नाम के एक गुरु थे जिनके पास शिक्षा लेने के लिए गए। तो इतने सरल वृत्ति के थे, इतने विनम्र थे, सुस्निग्ध थे कि गुरु के बहुत अधिक प्रिय बने, इतने आज्ञाकारी थे भाषाचार्य के। और कुछ ही दिनों में इतने अधिक विद्वान हुए हैं 12 साल की आयु में। कितने साल की आयु में? 12 साल की आयु में। एक दिन उनके जो गुरु हैं किसी कारणवश दूर चले जाते हैं तो आश्रम में या जो निवास था, गुरुकुल था, पहले तो गुरुकुल हुआ करता था, अभी तो गुरुकुल नहीं रहे, अभी ना गुरु ना कुल, दोनों भी भ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसे जो गुरुकुल है वहां वो अकेले थे, एक स्टूडेंट आता है एक घोड़े पर बैठकर और जोर से चिल्लाने लगता है, हे कौन है आश्रम में, आपके गुरु है यहां? तो बहुत डांटने लगा, चिल्लाने लगा हम गुरु का नाम लेकर उनके यमुनाचार्य के। बहुत घमंडी था, उसके वाणी में क्या था, घमंड या प्राइड था। तो फिर ये जो यमुनाचार्य छोटे से 12 साल के बाहर आए, उन्होंने कहा बताओ किसने भेजा है आपको? उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, ये जो मदुराई है पांड्य राजा है उसका जो प्रमुख जो गुरु है या विद्वान है जिनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? ध्यान से आपको याद रखना होगा ये नाम क्या है। देखो ये कहते ना कि जीवन में कोलाहल मच गया है। तो ये इतना विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति था राज दरबार में कि पूरे दक्षिण भारत सब जगह सारे विद्वानों को उन्होंने परास्त कर दिया था। इनका नाम सुनने मात्र से जो बड़े बड़े विद्वान दूर भाग के चले जाते थे। तो ये इसने कहा, उस युवक ने कहा जो घोड़े पर बैठ के आया था कि मैं कोलाहल का शिष्य हूं, तुम जानते नहीं हो, इवन इस देश का जो राजा है वो भी मेरे जो गुरु है उनका शिष्य है, उनका सेवक है, और आपके जो गुरु है भाषाचार्य उन्होंने 2 साल से टैक्स पे नहीं किया है। हाँ, कहाँ गए तुम्हारे गुरु? तो ये जो कोलाहल था विद्वान, जो भी व्यक्ति उनसे परास्त हो जाता था उसको टैक्स पे करना होता था, 1 साल के लिए हर साल धन देना होता था कोलाहल के लिए, और उनकी सेवा को उनकी गुलामी स्वीकार करने पड़ती थी। तभी जो भाषाचार्य थे वो बड़े गरीब थे, उनके पास धन नहीं था देने के लिए। लेकिन जब यमुनाचार्य ने देखा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु के बारे में ऐसे कठोर वचन बोलते जा रहा है, हाँ, क्योंकि बल्कि यमुनाचार्य बड़े सरल प्रवृत्ति के थे, उनका हृदय बहुत सरल था, लड़ाई झगड़े से दूर रहा करते थे। लेकिन जैसे ही वैष्णव के बारे में शास्त्र कहते हैं कोई हमारी निंदा करे तो उसको हमें सहन करना चाहिए, लेकिन भगवान और भक्तों की निंदा करे तो उसको हमें सहन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे यमुनाचार्य ने कहा कि आपके जो गुरु हैं या आपका जो ये विद्वान कोलाहल है वास्तव में वो मूर्ख है। गुरु का काम होता है कि शिष्य के हृदय से जो घमंडता है, प्राइड है, उसको दूर करना, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम ऐसे शिष्य हो कि तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है, वो वैसे की वैसे है। तो तुम्हारे कोलाहल करते क्या है जो तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या, द्वेष और घमंड को दूर नहीं कर पाए, तो ऐसे गुरु किस काम के हैं? उन्होंने कहा मैं उसे चैलेंज करता हूं, आपके जो कोलाहल जो विद्वान है उनको चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ शास्त्रों में वाद विवाद करें, मैं उनको परास्त करने के लिए तैयार हूं। अभी ये जो कोलाहल का शिष्य था वो डर गया, डरने गया। उसने कहा तुम तो एक छोटे पतंगे की तरह हो, आग से युद्ध करना चाहते हो। पतंगा यदि सोचे आग में आग को हराऊंगा तो आग से टक्कर लेने से वो मर जाएगा जलकर। तो फिर भी वो जाता है और राज दरबार में जाकर मैसेज देता है कि वो जो भाषाचार्य का शिष्य है 12 साल का यमुनाचार्य छोटा सा बालक, वो आपसे शास्त्रों पर वाद विवाद करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है। तो ये सुनकर कोलाहल बहुत हंसने लगा। उन्होंने कहा छोटा सा बच्चा मुझसे क्या वाद विवाद करेगा। तो वह राजा भी थे और वहां रानी भी बैठी थी, तो राजा को तो बड़ा भरोसा था अपने इस विद्वान के प्रति। राजा ने कहा कि ये जो यमुनाचार्य छोटा बालक है वो तो छोटे चूहे के समान है, वो बिल्ली से टक्कर लेना चाहता है। चलो आने दो, बिल्ली पहले क्या करती है चूहे को खाने से पहले खेलती है, बाद में उसको खा डालती है। तो राजा ने कहा मेरा जो ये विद्वान है इसमें मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर राजा ने सेना को आदेश दिया कुछ लोगों को जाओ और उस बालक को ले आओ। तो लोग गए जो सेना अधिकारी थे, उन्होंने कहा यमुनाचार्य चलो राजा बुला रहे हैं आपको। उन्होंने कहा राजा का निमंत्रण मुझे स्वीकार्य है लेकिन मैं भी कोई छोटा नहीं हूं, उस कोलाहल इतना जो बड़ा विद्वान है उसके साथ मुझे वाद विवाद करने के लिए यदि जाना है तो मुझे ऐश्वर्य के साथ प्रॉपर एटिकेट्स के साथ ले जाओ, बड़ी पालकी भेजो मेरे लिए, सेना भेजो। तो राजा समझ गए ये कोई छोटा मोटा दिखने साइज में छोटा है लेकिन विद्वत्ता क्या है बहुत बड़ी है। तो सब सैनिक भेजे, बहुत ऑपुलेंट जो पालकी था ऐश्वर्यशाली पालकी भेजा, उसमें ये छोटा सा बालक यमुनाचार्य बैठ के आए। बैठ के जब वो सेना आने वाली थी तो उनके गुरु आ पहुंचे थे। उन्होंने गुरु को नमन, गुरु ने कहा तुम क्यों उनसे क्यों तुम ये सब करने जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो अपने गुरु के चरणों में गिरे, उनके चरण कमलों को धोया, उनके चरणों की उपासना की। इसलिए शास्त्र कहते हैं यश प्रसादात भगवत प्रसाद। उनके आध्यात्मिक गुरु के प्रति यमुनाचार्य को बहुत फेथ था और आध्यात्मिक जीवन में सफलता का यही रहस्य है कि जो शिष्य है उसका प्रथम कर्तव्य है कि किस प्रकार से मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। हाँ, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना या कृष्ण के चेहरे पे स्माइल देखनी है तो किसके चेहरे में सबसे पहले स्माइल देखनी होगी, आध्यात्मिक गुरु के। वो सीक्रेट है एक शिष्य के लिए। शिष्य का जीवन ही है गुरु की प्रसन्नता करना, गुरु को प्रसन्न करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनके गौरव को बढ़ाना, एक शिष्य का प्रथम कार्य है। और ये जब होता है तो भगवान ऐसे शिष्य के प्रति ऐसे भक्त के ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं। यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तश्य ते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्र कहते कि जिस व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति है और कृष्ण के प्रति है तो वही उसी व्यक्ति को शास्त्रों का जो सारा सार है हृदय में प्रकाशित हो जाता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु की उपासना पूजा आदि की, उनके चरणों को धोया, उनके चरण रज को अपने सर में लगाया और एक महान युद्ध के लिए वो निकल पड़े। कौन निकले? कौन निकले? आप सुन रहे सब लोग? तो हम भी जा रहे हैं उनके साथ, यमुनाचार्य के साथ। तो यमुनाचार्य जब वो पालकी में बैठे और उस पैलेस पे पहुंच ही रहे थे मदुराई में राजमहल में, तो रानी ने जैसे देखा, रानी बहुत आनंदित हुई उसको देखकर, बल्कि यमुनाचार्य को देखने के लिए सारे मदुराई सिटी के लोग रास्ते में खड़े हो गए। कौन वो बालक है जिसको हम देखना चाहते हैं, जो इतने बड़े विद्वान को परास्त करने के लिए तत्पर है?
उसके लिए आशीर्वाद, उसके लिए मंगल याचना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, और सब लोग सोचने लगे कि ये वास्तव में भगवान वामन देव के समान है जिसने बलि महाराज को परास्त किया था। दिखने में वामन कैसे थे, छोटे से बौने थे, लेकिन जब मांगा वामन देव ने कि मुझे ना 3 पग भूमि चाहिए, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, क्या करना है इतना सारा लंबी चौड़ी चीजें, 3 पग। लेकिन उनको पता नहीं वो 3 पग कितने बढ़ा देगा, हाँ इतने पग डाले कि ब्रह्मांड ने खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, बलि महाराज परास्त हो गए। तो वैसे ही सबको ये विश्वास था, ये जो बालक है हाँ उनके समान, वामन के समान कुछ कार्य करके दिखाएगा। तो फिर ये गए तो राजा और रानी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो रानी ने कहा कि ये जो बालक है यही विजयी होगा। राजा ने कहा इतना मत बोलो, हाँ तुम्हारा इतना भरोसा है तो चलो हम वो लगा, क्या कहते हैं शर्त लगाते हैं, सही शब्द है शर्त। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये वचन देती हूं कि मैं आपके दासी की दासी बनने के लिए तैयार हूं यदि ये बालक परास्त होगा। तो राजा ने कहा मैं भी ये वचन देता हूं, यदि ये बालक जीतेगा विजय होगा तो मैं मेरा आधा राज्य उस बालक को प्रदान करूंगा, भेंट के रूप में प्रदान करूंगा, दे दूंगा। तो जैसे ही वो बालक ने प्रवेश किया तो ये कोलाहल हंसने लगा, ये छोटी सी चिंगारी क्या करेगी। लेकिन रानी ने कहा कि एक चिंगारी होती है ना बड़े बड़े पहाड़ों को भी जलाने का सामर्थ्य रखती है और राख भी बदल देती है, छोटी सी चिंगारी को इजी मत लो, बड़े बड़े महल बड़े बड़े घर चिंगारी से नष्ट हो जाते हैं। रानी इतनी खुश थी और उन्होंने रानी ने कहा जैसे देखा उन्होंने कहा अलबंदर, अलबंदर का मतलब है कि यही विजय होगा, हाँ ये कौन होगा विजय होगा। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी अलबंदर अलबंदर। तो फिर वो सब लोग बैठ गए और बैठने के बाद उनके अंदर, क्योंकि उस समय ये कल्चर था डिबेट होता था शास्त्रों पर न्याय तर्क आदि के ऊपर, ये जब बैठे तो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, राजा रानी बड़े सिंहासन पर बैठे थे और क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। तभी कोलाहल को लगा ये बच्चा है इसको क्या प्रश्न पूछने, उन्होंने छोटे छोटे ग्रामर के प्रश्न पूछना शुरू कर दिए, सिंपल सिंपल प्रश्न। तो यमुनाचार्य उत्तर देने लगे, फिर यमुनाचार्य को लगा इस बालक को लगा ये मुझे बच्चा समझ रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रकार से मेरा अपमान कर रहा है। तो यमुनाचार्य उस बालक ने कहा कि देखो अष्टावक्र मुनि ने भी जनक महाराज की सभा में जो बंदी नामक जो विद्वान थे उनको परास्त किया था, तो अष्टावक्र का साइज भूल गए थे आप, वो भी छोटे ही थे, तो अब मत ये मत भूलो किसी व्यक्ति के ज्ञान को उसके साइज से नापना नहीं चाहिए। उस बालक ने कहा तो कोलाहल डर गया, उन्होंने कहा ये बच्चा तो दिखता है कि बातें बड़ी बड़ी विद्वत्ता की करता है। तो उस समय उन्होंने कहा ठीक है अभी आप प्रश्न पूछो। तो इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछना शुरू कर दिए, किसने, यमुनाचार्य ने। यमुनाचार्य ने कहा कि मैं आपको केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। तो उनके बीच में जब ये शुरू हुआ तो यमुनाचार्य ने कहा कि मैं 3 प्रस्ताव रखूंगा, उनको आपको खंडन करना है या झूठा ठहराना है। तो ये तो खुश था, उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा पहला प्रश्न है कि आपकी जो मां है वो बांझ श्री नहीं है, इसका मतलब आपको ये स्थापित करना है कि आपकी जो मदर है वो क्या है, बांझ, बांझ ना क्या कहते हैं, बांझ श्री है। तो अभी इसको सुनकर ही गुस्सा हो गया, मेरी मां के बारे में बोल रहा है ना, और वो भी ये सब चीजें बोल रहा है। अभी इनको छोटा सा बालक था लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न सुनकर एक गुस्सा इतना अंदर से आ रहा था कि अभी क्या करो, उठकर गर्दन पकड़ो इस बच्चे की। अभी वो सोचने लगे कैसे हो सकता है मेरी माता बांझ से कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे जन्म दिया है। तो अभी फुल्ली कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ बोला नहीं जा रहा था। तो देखकर सारे लोग देखे जा रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है दूसरा प्रश्न पूछता हूं। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये जो राजा बैठे हुए हैं, राजा धीराज महाराज, ये क्या है? ये धार्मिक हाँ ये धार्मिक राजा है। इसका मतलब है आपको स्थापित करना है कि ये धार्मिक राजा नहीं है, पवित्र राजा नहीं है, सच्चे नहीं है। इस प्रकार से अभी कैसे स्थापित करो राजा के सामने कि राजा तुम्हारी में दी हुई रोजी रोटी खाता हो और अभी आपको आपकी जो पोल है वो खोल दो सबके सामने कि आप धार्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो, निष्ठुर हो, न्यायपरायण नहीं हो। तो कोलाहल का जो गुस्सा है और तेजी से बढ़ने लगा। पिछला प्रश्न उन्होंने पूछा कि राजा धीराज के साथ जो रानी महारानी बैठी है वो सावित्री के समान पतिव्रता, वफादार, श्रद्धालु नारी नहीं है अपने पति राजा के प्रति। अभी कितने कठोर है ये सारे प्रश्न। अभी ये साबित करना कि ये रानी पतिव्रता श्री नहीं है तो ये कोलाहल बिल्कुल खुद ही कोलाहल हो गए। हम बहुत फिर उठ गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ये जो मूर्ख है ये कैसे कह सकता है कि रानी वफादार नहीं है, पतिव्रता नारी नहीं है, कैसे कह सकता है कि ये राजा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, कैसे? अभी इसको क्या होना चाहिए? मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन जो इनकी ओर के लोग थे, यमुनाचार्य की ओर के जो लोग थे, वो सब चिल्लाने लगे हरि बोल हरि बोल। तो फिर राजा ने कहा नहीं, अभी इन्होंने कहा, कोलाहल ने कहा यदि आप इसके उत्तर दोगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं और अपनी पराजय को स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा तो बहुत सरल है, ये प्रश्न के उत्तर देना इतना कठिन नहीं है। पहला प्रश्न क्या था? आपकी जो माँ है वो मान श्री नहीं है, मतलब ये स्थापित करना कि वो मान श्री है। तो उन्होंने कहा एक ग्रंथ का रेफरेंस देके उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया, मनु संहिता, हाँ जो मनुष्य के लिए लॉ है, लॉ बुक है। तो मनु संहिता से उन्होंने एक श्लोक कोट करते हुए कहा कि मनु संहिता में कहा गया है कि जिस स्त्री का केवल एक ही बच्चा है उसको क्या कहा गया है? बांझ स्त्री कहा गया है। और कहा कि तुम अपनी माता के एकलौते बेटे हो, एक ही बच्चे हो, इसलिए शास्त्रों के अनुसार क्या है, तुम मैं भी बहुत विद्वान हो, बहुत गौरवशाली हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो माँ क्या है? बांसुरी। और ये कार्य तो सही है, शास्त्र ऐसा कह रहे। चुप हो गए वो। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, हम दूसरा प्रश्न क्या था कि जो राजा धार्मिक नहीं है, ये स्थापित करना कि वो अधार्मिक है, न्यायपरायण नहीं है, परोपकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा मनु संहिता कहती है कि जो राजा है वो प्रजा के जो पवित्र कार्य है, पुण्य कार्य है, धार्मिक कार्य आदि है, उनसे उनका उपभोग करता है। धार्मिक कार्य यदि प्रजा करती है तो राजा को लाभ होता है, 1/6 पोर्शन। तो वैसे ही प्रजा जब पाप कार्य करती है, अधार्मिक कार्य करती है, तो वो राजा को स्वीकार करना होता है, 1/6 पोर्शन जो है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कलियुगा में जो प्रजा है कोई पुण्य कार्य नहीं करते, दिन रात पाप कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं लोग, दिन रात पाप कर्म ही करते रहते हैं। इसलिए हाँ जो प्रजा के जो पाप कर्म है, अधर्मिक कार्य है, वो राजा को उपभोग उसका भोग करना होगा, उसको भोगना होगा, उसके जो कष्टमय स्थितियां हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि राजा धार्मिक एक प्रकार से नहीं है, बल्कि वो पर्सनली धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ये सब प्रजा आदि है जिनके कारण वो धार्मिक नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न जो था कि ये जो रानी है वो पतिव्रता रानी नहीं है, सुशील नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि मनु संहिता कहती है कि जो राजा है वो देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। राजा के शरीर में 8 देवताएं निवास करते हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र। तो तो इसका मतलब रानी इन सब का संग करती है। तो इस प्रकार से वो कैसे पतिव्रता हो सकती, कैसे कहा जाए कि वो पतिव्रता है। तो इस प्रकार से बड़े ही सरलता से और अपने बौद्धिक कुशल बुद्धि के द्वारा यमुनाचार्य जो बालक था उन्होंने उनको हरा दिया। किसको हरा दिया? कोलाहल खत्म हो गया। तो उसी क्षण राजा ने जो भी प्रश्नों के उत्तर सुने अपने बड़े से महासंघ के उत्तर के दौड़ के आए और यमुनाचार्य का आलिंगन किया। रानी तो खुशी थी, रानी को तो इतनी खुश हो गई वो चिल्लाने लगी अलबंदार अलबंदार। और फिर आकर राजा ने आलिंगन किया और कहा कि मैं अपना जो आधा राज्य है इस बालक को प्रदान करता हूं। अभी कुछ क्षण पहले बिल्कुल गरीब भिखारे थे, आश्रम में रह रहे थे, कहा किसे कोने में, अभी थोड़ा सा विद्या का प्रदर्शन नहीं किया तो क्या हो गए, आधा राज्य की उन्होंने प्राप्ति की है। तो 12 साल में, 12 साल की आयु में ये जो यमुनाचार्य है वो कौन बने, साउथ के राजा बने, बहुत बड़े राजा 12 साल की आयु में। लेकिन धीरे धीरे जब इन सब चीजों में, इन सारे अफेयर्स में वो मग्न होने लगे, धीरे धीरे वो कृष्ण भक्ति को भूल गए। हाँ, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपरंत चेतसां। हाँ, कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हो जाता है तो उसकी चेतना भगवान में तल्लीन होना बहुत कठिन हो जाती है। हाँ, तो इस कारण से वो इतने मग्न हो गए हैं, विशेष रूप से जो धन है, भोग आदि है, असत संग है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य है, उनमें इतने मग्न हो गए हैं कि विष्णु भक्ति, भगवत सेवा, अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भूल गए। और हमारी स्थिति भी वैसी ही है। धीरे धीरे जब हम भौतिक रूप से उन्नति करते हैं तो देखते हैं कि असत संग में हम अधिक प्रवृत्त होते हैं। सत संग छाड़ी कहनो असते विलास ते कारणे लागी आमा कर्म बंद पाश। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरा जीवन इतना दुर्भाग्यशाली है कि सत्संग, सज्जन लोगों का संग मैंने त्याग कर दिया, असज्जन असत लोगों का संग मैंने करना शुरू किया और भौतिक जगत मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वैसे होता है, भक्तों के संग में आते हैं भक्ति बड़ी अच्छी लगने लगती है। नहीं, जब आप भौतिक संग में लिप्त होते हैं, लोगों का संग करते हैं दिन रात, उनके संग में रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके साथ खाते पीते उठते बैठते बहुत अधिक हो जाता है तो हमें भौतिक जगत बहुत अच्छा लगने लगता है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य बहुत मधुर लगने लगते हैं। तो इसलिए ये जो यमुनाचार्य हैं ये भी भूल गए कृष्ण भक्ति को, पूर्ण रूप से एक प्रकार से भूल गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना है यह असली विद्या है, यह असली हमारा धन है। राज विद्या राज गृहम भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगात शरंती। वो व्यक्ति एक हिरण या मृग के समान है, पशु के समान है, जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या नहीं है। कौन सी विद्या नहीं है? राज विद्या। एक तो भौतिक विद्या तो हम सबके पास है, भौतिक विद्या, जड़ विद्या, माया न वैभव जीवे के कराये गधा। ये जो भौतिक विद्या हम अर्जन कर रहे हैं ये तो हमें कृष्ण को भुला रही है, कृष्ण से दूर ले जा रही है यह भौतिक जो ज्ञान है। और हमें धन अर्जन करने के लिए, भौतिक जीवन को कंटिन्यू करने के लिए हमें गधे के जैसे कार्यरत होना होता है। इसलिए जो कोई विद्या है जिसको हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए वो भगवत विद्या है, भगवत ज्ञान है, भगवत सेवा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं एषाम न विद्या, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, न तपो न दानम, जिस व्यक्ति के जीवन में तपस्या करने की भावना नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में दान देने की भावना नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिस व्यक्ति के जीवन में सुशीलता नहीं है, सदाचार नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, धर्म का पालन करने का ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति इस जगत में केवल पृथ्वी पर भार है, बोझ है। क्या है? बोझ बन के जी रहे हैं। और उन व्यक्ति की तुलना मनुष्य रूपेण
मृगा चरंती, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में एक हिरण है, पशु है, मृग है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वह हमें कृष्ण को भुला देती है, भोग और ऐश्वर्य। जिस प्रकार से कोई जलाशय होता है जिसके किनारे पेड़ है या घास वगैरह उग जाती है, तो धीरे धीरे जलाशय के जल को सुखा डालती है, जलाशय सूख जाता है। उसी प्रकार से भौतिक भोग करने की जो इच्छा हमारे हृदय में जब बढ़ती है, तो कृष्ण भक्ति रूपी जो जलाशय हमारे हृदय में है, कृष्ण के प्रति सेवा या प्रेम की भावना है, वो खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को भगवत भक्तों के संग में सदैव कृष्ण का जो स्मरण आदि है उसमें मग्न होना। तो ऐसे यमुनाचार्य क्या हुए, कुछ समय के लिए भूल गए। किसको भूल गए? कृष्ण को भूल गए। लेकिन और एक भक्तों को याद था। क्या याद था? कि इनको भुला नहीं देना, इनको याद दिलाना है मुझे कि कृष्ण, कृष्ण कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भक्त लोग कुछ नया काम नहीं करते, डिवोटीज केवल आपको याद दिलाते हैं कि अरे कृष्ण आपके पिता हैं, कृष्ण आपके बंधु हैं, सखा हैं, प्रेमी हैं, आपके असली हितेशी हैं। ये भक्तों का कार्य है। तो ऐसे ये जो यमुनाचार्य थे, उनके ग्रैंड फादर थे, जिनका नाम क्या था? नाथ मुनि। क्या नाम था? आप याद रखिए थोड़ी देर के लिए। तो नाथ मुनि ने जब संन्यास ग्रहण किया था और उनको उन्होंने देखा कि उनका जो पौत्र है वो राजा बन गया है, लेकिन उनको एक चीज का दुख लगा कि ये कृष्ण को भूल गया है ना। असली हमारे रिलेटिव्स, माता पिता, जो बंधु सखा या ग्रैंडफादर कौन है जो हमारी चिंता करते हैं? क्या? कि ये व्यक्ति कृष्ण को ना भूले। तो ये जो नाथ मुनि थे उनको बहुत चिंता हुई कि ये तो भौतिक कार्य में मग्न होकर कृष्ण को भूल गया है, कृष्ण की सेवा को भूल गया है। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया जिनका नाम था राम मिश्र। क्या नाम था? हाँ, तो राम मिश्र को बुलाया, कहा कि हे राम मिश्र, तुम क्या करो, ये जो दक्षिण के जो राजा हैं यमुनाचार्य, उनको पता था कि ये उनके पौत्र हैं, इनका उद्धार करने का कार्य आपके ऊपर है, इनको कृष्ण का स्मरण दिलाना, कृष्ण की सेवा में नियुक्त कराने का कार्य आपका है। और ये उनके गुरु से उन्होंने ये सेवा प्राप्त की। क्या करना? प्रचार करना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। नाथ मुनि ने कहा कि एक ही व्यक्ति का उद्धार करने के लिए जब राजा का प्रभुपाद ने या चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें सबका उद्धार करने के लिए बोला है, जिसको भी मिलोगे, जिसको भी देखोगे, उसे कृष्ण के बारे में बताओ। तो ऐसे राम मिश्र उनके जो गुरु थे उनकी आज्ञा को लेकर चले जाते हैं ढूंढते हुए है। तो वो पहुंच रहे मदुराई में, सोचा कि राजा को सीधा मिलता, गए तो देखा कि राजा को मिलना तो असंभव है, वहां तो सेना, घोड़े, हाथी, रथी, महारथी, बड़े बड़े राजा उनसे मुलाकात करने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं। उन्होंने सोचा मैं सिंपल सन्यासी साधु, कौन मुझे अंदर जाने देगा, कौन राजा से मिलवाएगा। तो उन्होंने योजना सोची, एक योजना, एक प्लान बनाया। कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, यदि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की या वैष्णव की सेवा करने की इच्छा है, तीव्र आकांक्षा है, तो भगवान उस व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो सेवा आप कैसे कर सकते हो। तो उस राम मिश्र को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि जिसके द्वारा उन्होंने बहुत अद्भुत योजना बनाई। वो योजना क्या थी कि राम मिश्र ने सोचा राजा को मिलना तो मुश्किल है, लेकिन क्या करता हूं, वो आयुर्वेदा में एक्सपर्ट थे, उन्होंने सोचा कि जो एक सब्जी है, एक शाक है, जिसको कहा जाता है तुड़ुवलई। क्या कहा जाता है? तुड़ुवलई। साउथ में आती है, उगती है वो शाक, जैसे अब पालक है, मेथी है, बहुत सारे शाक है, वैसे तुड़ुवलई है। ये तुड़ुवलई शाक खाने से व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। तो कितना मायने रखता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सब चीजें शास्त्र हमें प्रदान करते हैं। तो उन्होंने सोचा जो तुड़ुवलई सब्जी है
शाक है उसको ढूंढता हूँ और वो जाकर राजा के जो कुक है उसको देता हूँ। तो देखा कि राजा के महल के थोड़ा नजदीक ही वो शाक उगी हुई थी, उन्होंने लिया और वो जो चीफ कुक थे जो राजा के लिए भोजन बनाते थे उनके पास गया और उनको कहा कि आप क्या करो, यहाँ के राजा बड़े पायस राजा है, पुण्यवान है, सारे प्रजा का बड़ा अच्छा देखभाल करते हैं, तो आप ये जो तुड़ू वाली सब्जी ये इसका सब्जी बनाओ, शाक का शाक उनको खिलाओ जिसके द्वारा राजा की लंबी आयु होगी और उस सतगुण में आएंगे, बहुत गुणों का विकास होगा, आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो वो जो कुक था उन्होंने इनकी बातों को स्वीकार किया और एक दिन सब्जी बनाई, शाक बनाई तुड़ू वाली, और राजा को जब सर्व किया प्लेट में, राजा खाने लगे। राजा आपका जो चित्ता है मन है भौतिक भोग आदि में इतना मग्न था, जैसे अन्न वैसा मन, जैसा हम खाते वैसा मन होता है, वैसे विचार वैसे हमारा चरित्र और वैसे आचरण आदि बनता है। तो ऐसे राजा ने जब वो तुड़ू वाली सब्जी जो शाक है वो खाना शुरू की तो उसका मन बिल्कुल पीसफुल हो गया और सत्वगुण का विकास होने लगा और शांत होने लगे। फिर एक दो महीने तक कंटिन्यू ये राम मिश्र शाक निकालते थे, जाकर देते थे उनके किचन में और राजा उसको स्वीकार करते खाते थे। राम मिश्र ने कहा एक दिन नहीं, एक दिन गैप किया। तो राजा इतना आसक्त हो गया था, राजा ने कुक को बुलाया, अरे कुक इधर आओ, आज क्यों नहीं शाक क्यों नहीं बनाए तुमने, तुड़ू वाले क्यों नहीं बनाए। उन्होंने कहा आज एक एक साधु है जो रोज ये शाक लेके आता है और मैं कुक करता और आपको सर्व करता हूं, आज वो आया नहीं। उन्होंने कहा कौन है, मैं नहीं जानता, वो तो घूमता रहता है, कहां से आता है मुझे नाम भी नहीं पता, वो क्यों सेवा करता है, कुछ पैसे लेता है क्या। उन्होंने कहा नहीं, वो धन आदि नहीं लेता, बस आपके प्रति उसका बहुत प्रेम है, आउट ऑफ लव वो आपकी सेवा कर रहा है निस्वार्थ। राजा को लगा नहीं मुझे उससे मिलना चाहिए, हाँ तो भगवान ने बुद्धि दी। तो राजा से दूसरे दिन आए वो मिले और राम देखा इस तो महान साधु है राजा, क्योंकि अभी सत्वगुण का विकास हुआ था। शाक खाते खाते राजा उनके चरणों में गिर पड़े, कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्यों आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हो शाक भेज भेज के खुद। उन्होंने कहा मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना देना चाहता हूं जो आपके ग्रैंडफादर नाग मुनि छोड़ के गए हैं, इतना बड़ा ट्रेजर है, धन संपदा है, वो आपको देना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहां आया हूं, मुझे कोई और चीज की अपेक्षा नहीं है। तो राजा ये जो यमुनाचार्य थे वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने सोचा अरे ऐसे भी व्यक्ति जगत में है जो दूसरों का खजाना संभाल के रखते, खुद को कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरों को देना चाहते हैं, अभी रोड पर हमें 10 रुपए मिले तो भी उसको पूरे अंदर की जेब में रख देंगे, नहीं कोई देख ना पाए, और यहाँ इतना बड़ा खजाना उनको प्रदान किया है। तो फिर उन्होंने कहा मैं वो देना चाहता हूं, तो लेकिन वो जो खजाना है उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, वो खजाना 7 दीवारों के बीच में है, 2 नदियों के बीच में रखा गया है, अरे बहुत विशाल सांप सर्प क्या कर रहा है उसकी रक्षा कर रहा है, और एक मंत्र के द्वारा उस खजाने की रक्षा हो रही है, और 12 साल में एक बार एक राक्षस आता है दक्षिण से और उसको चेक करता है कि खजाना है या नहीं, या कोई ले गया, और वो जो खजाना है मंत्र के द्वारा ही प्राप्त होता है, रिवील हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा हम चलते हैं अपनी चतुरंगी सेना लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको अकेले चलना होगा मेरे साथ। उन्होंने कहा ठीक है अकेले चलते। अभी यमुनाचार्य को युद्ध करना था बड़े बड़े राजाओं से, तो धन की आवश्यकता थे, उनको लगा फोकट का धन मिल रहा है तो क्यों नहीं बटोरा जाए, नहीं तो फिर उन्होंने सोचा चलो चलते आपके साथ। तो फिर वो अकेले चल पड़े, मदुराई से कहां चल पड़े श्रीरंगम की ओर। तो मदुराई सिटी से बस से जाते तो आपको 3.5 घंटे लगते हैं, तो अभी ये चले राम मिश्र आगे और राजा उनके साथ। तो जब ये राम मिश्र चले तो वो खाली नहीं जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे अपने मुंह से भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते जा रहे थे, और
भगवत गीता के पहले अध्याय का उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, चलते चलते दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। तो जैसे भगवत गीता के श्लोक यमुनाचार्य के कानों में पड़े ना, उनको याद आया, अरे कई साल बीत गए, अभी उनकी आयु 37 इयर्स की थी। राजा कब बने थे वो? तब से भूल गए थे कृष्ण को। लेकिन जैसे राम मिश्र के संग में आए, संपर्क में आए और भगवत गीता के श्लोकों को सुना, तो उनके हृदय में धक्का लग गया। उन्होंने कहा, ये क्या है, मैं इतना अधिक भौतिक भोग आदि में मोहित हो गया था, एक पागल व्यक्ति की भांति, जो कृष्ण मेरे जीवन के परम सेव्य ईश्वर है, उनकी सेवा को छोड़कर मैं अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा था, भौतिक जगत की सेवा में नियुक्त था। तो वो उनको रोना आ गया, वो दुखी होने लगा। और जैसे ही राम मिश्र ने 18 अध्यायों का उच्चारण किया, तो राजा यमुनाचार्य अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके चरणों में रोते हुए गिर पड़े, चिल्लाने लगे कि मैंने अपना जो ये मूल्यवान देह है, जीवन है, उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हे राम मिश्र, मुझे आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं आपके संग में सदा ही कृष्ण कथामृत का, भगवत गीता को रिलीज करना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहता हूँ। और मुझे जैसे जैसे भगवत गीता को सुनता हूँ, तो वैसे वैसे मुझे प्रतीत होता है कि मैं वास्तव में तुच्छ जीव हूँ, लेकिन इस भौतिक भोग और ऐश्वर्य आदि से मैं अपने आप को बहुत महान समझ रहा हूँ। और यही वास्तविक जीव का स्वभाव है, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भगवत भक्ति को समझना मीन्स ये समझना कि मैं कृष्ण का तुच्छ सेवक हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो ऐसे राजा को ये प्रतीत होने लगा, तो उस राम मिश्र ने कहा, तो क्यों नहीं हम भगवत गीता का अध्ययन कर लेते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं, आगे जाना है फिर आपका, पीछे तो राजा है। तो बैठ गए, एक वीक के लिए भगवत गीता श्रवण करने लगे, चर्चा करने लगे। हाँ, और भगवत गीता का जब 12वें अध्याय का 8वां श्लोक का उच्चारण करने लगे राम मिश्र, हमेव मन अधस्व मई बुद्धि निवेशया निवस शेषि मयेव अदा उद्वन संशया, कि जो व्यक्ति मुझमें मन नियुक्त करता है, या भगवान कहते मुझमें मन लगाओ पूर्ण रूपे न, मेरे बारे में सदैव स्मरण आदि करता है, तो ये सुनकर, ये श्लोक सुनकर ही यमुनाचार्य रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन पूरी तरह से गंवा दिया है और केवल दो चीजों में मैं अपना जीवन गंवा दिया है, एक है लस्ट काम में और दूसरा है धन अर्जन के लिए, और मैं कृष्ण की सेवा को भूल गया हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा, कब वो दिन आएगा कि ये जो यूजलेस चीजें हैं जिनके बारे में सोचने से मैं अपने आप को मुक्त करूं, और कब वो दिन आएगा जब मैं निरंतर कृष्ण के बारे में सोचूं। कृष्ण के बारे में निरंतर कैसे सोचा जा सकता है?
हरे कृष्णा
जोर से,
हरे राम राम राम,
और कब मैं अपना मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों में नियुक्त करूं। तो फिर उस राम मिश्र जो साधु थे, उन्होंने कहा कि हे यमुनाचार्य, ये तो कुछ दिनों के लिए तो भूल गए थे कृष्ण को, जैसे बादल सूर्य की किरणों को हमारे हम तक पहुंचाने में बाधा बनता है, वैसे ही ये जो भोग ऐश्वर्य आदि है, इनके कारण, असत्संग के कारण तुम कृष्ण को और कृष्ण सेवा आदि को भूल गए थे। तो फिर वो लोग चलने लगे, चलते चलते श्रीरंगम आए, विशाल मंदिर, जिसमें उन्होंने 6 दीवारें क्रॉस की, जो 7वीं दीवार क्रॉस की तो सामने देखा और इन्होंने कहा कि ये रहे धन। पहले तो जब ये उनके चरणों में गिरे थे, उन्होंने कहा ना मुझे धन चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बोला है आपको धन देना, मैं देके ही रहूंगा धन आपको। तो वैसे ही जब ये पहुंचे विशाल मंदिर के पास और उसकी 6 दीवारें पार की और 7वीं दीवार को क्रॉस करके जब सामने खड़े हो गए, तो यमुनाचार्य रो पड़े, अंदर दौड़ पड़े भगवान के विग्रहों को देखकर और जाकर उनके चरणों में मूर्छित हो गए। जैसे इन्होंने कहा ये रहे तुम्हारे धन, अभी हम मंदिर आते हमें लगता है कि कृष्ण मेरे धन है, नहीं, हमें सोचते कार मेरा धन है,
मोबाइल मेरा धन है, टैब मेरा धन है, घर मेरा धन है, बैंक बैलेंस मेरा धन है, लेकिन वास्तव में असली धन कृष्ण है। हम कृष्ण भक्ति है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता।
बाकी चीजें या तो लोग छीन लेंगे या फिर काल टाइम हमसे छीन लेगा सारी चीजें, शरीर भी छीन लेगा। लेकिन गीता में कृष्ण कहते नया विक्रमणा शोस्ती प्रत्यवायन विद्यते, हाँ कि जो कृष्ण भावना है थोड़ी भी आप भगवत सेवा करते हो, वहां भगवत भक्ति करते हो, वो किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उसे छीना जा सके आपसे। तो इसलिए वो असली धन है जो धन कोई हमसे छीन ना सके। तो बाकी चीजें छीने जा रही है तो वो असली हमारी चीजें नहीं है, वो असली हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो असली हमारा धन नहीं है। तो जो आप योगाचार्य ने विग्रह को देखा, हाँ उस धन का वर्णन कैसे किया था उन्होंने, सात दीवारों के अंदर है। तो श्रीरंगम में आप जाते हैं तिरछी के पास, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, सात दीवारें हैं जिनको क्रॉस करके आपको जाना होता है सातवें दीवार के पास, अब भगवान को देखते हो, जिनका नाम क्या है, रंगनाथ। क्या है नाम? हाँ कृष्ण है रंगनाथ। जो ऐसे रंगनाथ, जैसे उन्होंने कहा कि एक सर्प के द्वारा रक्षित है, और रंगनाथ भगवान चतुर्भुज रूप में है, विष्णु फॉर्म में, और किसमें लेटे हुए है, अनंत शेष के ऊपर भगवान लेटे हुए है विष्णु फॉर्म में। और वो विग्रह की जो पूजा है भगवान राम किया करते थे अयोध्या में, लेकिन जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया, विभीषण जब अयोध्या आए तो विभीषण ने कहा मुझे कुछ सबसे मैं कोई चीज मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या, ये भगवत विग्रह चाहिए मुझे। राम जी का धन वो थे, उनको विभीषण ने मांगा, दक्षिण भारत ले गए। तो ऐसे जो विभीषण है आज भी वहां आते हैं और उस धन को चेक करते कि कोई ले तो नहीं गया। हाँ जैसे आप वृंदावन जाते हैं तो बाके बिहारी है, पर्दा क्यों लगाते हैं वहां, बार बार पर्दा लगाते खोलते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के साथ भाग के चले जाते हैं, मंदिर खाली हो जाता है, कोई प्रेमी भक्त आ जाता है। इसलिए भगवान और भक्त की आंख नहीं मिलनी चाहिए, आंख मिल गए तो फिर फंस गए भगवान, नहीं फिर चले चले जाएंगे। तो इसलिए बार बार पर्दा लगाते खोलते, पर्दा लगाते खोलते। तो वैसे ही ये जो विभीषण आके चेक करते वहां, तो इस प्रकार से दो नदियों के बीच में और मंत्र के द्वारा भगवान रिवील हो जाएंगे उद्धान। मंत्र क्या है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये प्रयास इसीलिए है, हम यहाँ आते क्यों आते हैं, धन प्राप्ति के लिए, भौतिक धन नहीं। लोग भगवान के पास आते पूरा लिस्ट लेकर आते हैं, वो पढ़ पढ़ के थकते और भगवान सुन सुन के थक जाते हैं। तो इसलिए मंदिर आते हैं तो असली धन प्राप्त करने के लिए। और धन क्या है, धनम और नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण, नित्यानंद प्रभु या राधा कृष्ण हमारे असली धन है। और वो धन हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम कंटिन्यूअसली गंभीर रूप से भगवान के भक्तों का संग करें। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया है। संघ का मतलब एकत्रित आओ और क्या करो, भगवान के बारे में सुनो, चर्चा करो और उनकी सेवा करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूने। हम सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन अभी भौतिक इच्छाओं के कारण वो ढक गया है। लेकिन जितना अधिक हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवत सेवा में नियुक्त होते हैं, तो जिस प्रकार से यमुनाचार्य भूल गए थे, लेकिन राम मिश्र के संग से उनको फिर से भगवत स्मरण जाग उठा, तो वैसे ही भक्तों के संग में आते हैं और इन कार्यों को गंभीरता से करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवत चेतना या कृष्ण चेतना को हम उजागर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमें मौका प्रदान किया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, एक श्लोक पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ, उसमें कहा गया है यावत् स्वस्थमिदं शरीरं मरुजं यावत् दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मश्रेषितावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान्
संदिप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्धमा की दृशा।
तो इस श्लोक में कहा गया है कि जब तक ये देह स्वस्थ है, इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं है, हम जब स्वस्थ देह है और जब तक हमारे जीवन से बुढ़ापा दूर है और जब तक ये सारी शरीर की इंद्रियां काम कर रही है बहुत अच्छी तरह से, आके देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ पांव चल पा रहे हैं, हाँ ये सब चीजें ठीक है और हमारी आयु भी कम नहीं हुई है, ढीली नहीं हुई है, तो ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपने भलाई का साधन ढूंढना चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसे नहीं करना चाहिए कि घर को आग लगे और कुआं खोदने के लिए जा रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अभी हमारे पास उचित समय है, उचित मौका है, स्वस्थ देह है, सारी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, भक्तों का अच्छा संग है, तो भलाई का कार्य क्या है? गंभीरता से, तीव्रता से कृष्ण भक्ति को करो, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो, अन्यथा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां सब कष्ट देने लगेगी, कान से सुनाई नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तब हम सोचेंगे कि मंदिर चलते हैं, कथा में बैठते हैं, वो सब नहीं, तब कहेंगे कि परिक्रमा लगाने चलते हैं, गोवर्धन चलने में मुश्किल हो रही है, पीठ दर्द शुरू हो गया है, फिर आगे बैठ के प्रवचन कैसे सुनेंगे। तो इसलिए ये सब आने से पहले क्या करना चाहिए? आपने भलाई के बारे में सोचो, भलाई क्या है? नमे विदु स्वार्थ गति में विष्णु, कृष्ण की सेवा, और कृष्ण की सेवा का सर्वोत्तम उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे।